आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 36वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 408 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही यूपी स्टेट ट्रेड शो का उद्घाटन भी किया। उन्होंने ट्रेड शो में लगे विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर गीडा में 6,139 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के सापेक्ष विभिन्न निवेशकों को हुए भूखंड आवंटन का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने निवेश का माहौल बनाया है।
आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जाते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसी दिसंबर महीने में हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार अपने ही जनपद में, अपने ही प्रदेश में आज सुलभ कराने का एक बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है।
मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर 20 दिसंबर तक मेले से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खिचड़ी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा और उनकी सहूलियत प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। एक रिपोर्ट।
तैयारी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मेले का सजीव प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए किया जाएगा ताकि वे लोग भी मेले में वर्चुअल सहभागी हो सकें जो किन्हीं कारणों से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री ने खिचड़ी मेला में स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान देते हुए नगर निगम को इसे जीरो वेस्ट इवेंट बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, साथ ही विभिन्न मार्गों पर परिवहन निगम के बसों का संचालन भी होगा। समाचार कक्ष से अरुण।
केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बैठक में संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत गणना प्रपत्र भरने और उसे डिजिटाइज करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। इसे लेकर प्रदेश के सभी जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वे अपने गणना प्रपत्र समय से भरकर जमा कर दें। गोरखपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि गणना प्रपत्र में यदि 2003 से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं, तो जो जानकारी मतदाताओं के पास है उसे ही भरकर गणना प्रपत्र जमा कर दें। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्र नहीं जमा होने से मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। इसी तरह अभियान में तेजी लाने के लिए पीलीभीत जिले में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं द्वारा आज जागरूकता रैली निकाली गई। हमीरपुर में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी घनश्याम मीणा ने 12 पर्यवेक्षकों का वेतन रोक दिया, तो वहीं श्रावस्ती के जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी पांडेय ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को सम्मानित किया। लखनऊ में चल रहे सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज हुए महिला एकल के सेमीफाइनल में उन्नति हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें तुर्की की निस्लिहान एरिन ने 21-15 और 21-10 से पराजित किया। इसके साथ ही महिला एकल में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।